संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में मौन महान जिन विचरे हों। समय सार का 137वां कलश की चर्चा अपन कर रहे थे। सामान्य अर्थ उस दिन अपन ने इसका किया था, अब इसकी थोड़ा एक दफे करके आगे बात करते हैं। देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था इसमें 5-6 पेज लिखे हुए हैं, 8 या 9 पेज हैं, और आप लोगों से पढ़ने के लिए कहा था कि आप पढ़ के आना, पर एक दिन की बजाय आपको 3 दिन मिल गए अचानक। तो आप तो ये मान के चलना ही चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं, क्योंकि सारे पेज यहां पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पंक्ति उसमें महत्वपूर्ण है, सभी के मत उसमें दिए हैं। एक बार फिर अपने विश्व सामान्य अर्थ पर विचार करके बात करते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयं अयम अहम, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा मानकर, और जातु बंधु न मे स्यात, और मेरे तो कोई बंध होता ही नहीं है। बात उन्होंने ये कही थी शास्त्रों में कि सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता। उसका अर्थ ये था कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व आदि जो 41 प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता, बाकी का बंध होता है ना। और वो स्थिति ये है कि भोग के काल में, चाहे युद्ध के काल में, चाहे सामायिक के काल में, 3 काल पकड़ लिए बंध, भोग का काल, युद्ध का, राग का काल, द्वेष का काल, और शुभ भाव का भी काल एक अलग चौथा तीसरा पकड़ लो, और चौथा मैंने राग द्वेष और महाबतादिक का पालन करे, ऐसे शुभ भाव के काल में भी, और शुद्धोपयोग मैंने आत्मा के ध्यान में लीन हो, 4 बातें हो गई। चौथे गुणस्थान वाले की 4 ही अवस्थाएं होंगी ना, या तो वो विषय भोग में प्रवृत्त होगा कह रहा हूं, लीन होगा या नहीं कह रहा हूं, या अयोध्याधिक में प्रवृत्त होगा, या भगवान की भक्ति आदि के स्वभावों में प्रवृत्त होगा तत्वचर्चा आदि के में, और या कभी 6 महीना में एक दफे आत्मा में भी चला जाए। कितना ही रेयर हो, लेकिन 4 अवस्थाओं से 5वीं अवस्था तो नहीं होगा। अब 4ों अवस्थाओं में वो जो 41 प्रकृतियों का बंध रुका है, वो रुका ही रहेगा, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अंदर गए तो रुक गया और बाहर आए तो बंद हो जाए। ये बहुत मार्मिक बात है जो हर एक को ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, समर अधिकार के कलश और निर्जर अधिकार के कलश बहुत ही मार्मिक हैं। समर अधिकार के कलश में सब भेद विज्ञान से होता है, बहुत मार्मिक तरीके से समझाया है, और निर्जरा के अभी जो आप कलश पढ़ते हो तो इसमें अपने रोम रोम खड़े हो जाएं, ऐसी ऐसी बातें हैं, और कितनी गहरी प्रेरणा है। अंधे जगत के प्राणियों, तुम कहां उलझ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करें आचार्य, ख्याल में आई ना। तो अगर 4ों ही स्थितियां हों, 4ों कौन कौन सी बता सकते हो, बोलो फटाफट खड़े हो गए। और शुभ भाव में पूजा पाठ भक्ति सत्यचर्चा चिंतमन मनन इनमें लगा हूं, तो 4ों ही अवस्थाओं में वो 41 प्रकृतियों की जो पोजीशन है वो एक सी ही है, माने वो नहीं बंधती हैं तो नहीं बंधती हैं। अब जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा शुभ अशुभ का, वो तो इनके अलावा जो बंधती हैं चारित्र मोह के उदय से उनमें पड़ेगा। अब वो चारित्र मोह के उदय की बात ही नहीं है, जब उनको हमने कह दिया बंधती ही नहीं है, तो उसमें कौन बंधी और कौन नहीं बंधी इसका भेद करने से क्या लाभ है, स्पष्ट होगी ना बात ये तो। और ये कोई शैली अकेली समय सार की नहीं है, गोमर सार में भी यही शैली अपनाई है, और एक दफे बहुत साल 6 महीने हो गए होंगे मैंने आपको निकाल के बताया था, उसमें गोमर सार के पूर्ण स्थानाधिकार में ये गाथा है, मिच्छे खलु ओ दैयो विधियोपनपारणामियो भावो मिच्छेखयो विसमियो अवरद सम्मह्यतिन्नेव। ये तार पहले गुणस्थान में अवधिक भाव है, दूसरे गुणस्थान में पारनामिक भाव है, तीसरे गुणस्थान में संयुक्त, चौथे गुणस्थान में तीनों भाव हैं। ये बताई थी। अरे उसमें ये सबसे बड़ी समस्या दूसरे गुणस्थान में पारनामिक भाव बताया, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर उन्होंने अगली गाथा में दिया, ए दे सब्बे भावा दंशन मोहम पदुच्च भने दाहू। ये सारे भाव दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा बताए हैं, और तत्त्व उविरम। अब इसके ऊपर जो हम बात करेंगे वो चारित्र मोह संबंधी होगी, है ना? तो गाथा क्लियर एकदम। तो देवी ऐसे ही भेद कर रहे हैं ना भावों के बताने में, यहां दर्शन मोह की अपेक्षा बात कर रहे हैं, वहां चारित्र मोह की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो यही तो समय सार कर रहा है। यहां दर्शन मोह की अपेक्षा बात कर रहा है, चारित्र मोह की बात, क्योंकि पारनामिक भाव कहा तो उसमें दर्शन मोह का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षयोपशम है, ना क्षय है, चारों अवस्थाएं नहीं है, इसलिए उन्होंने पारनामिक कह दिया। चारित्र मोह की तो है ना, तो पारनामिक भाव क्यों कहा, समझे ना? चारित्र मोह की उपेक्षा को गौण किया तभी कहा ना, तो ऐसे अपन यहां भी कर सकते हैं गौण। तो कहते हैं उन जन प्रकृतियों के हम बंध का अभाव कह रहे, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, तो उन चारों अवस्थाओं में बंध नहीं होता, ये माने भोग के काल में और सामायिक के काल में कोई फर्क नहीं है। ये बात बहुत गले उतरने जैसी नहीं है, क्योंकि हमारे गले तो ये भी नहीं उतरती है कि पूजा पाठ के समय और भोग के समय दोनों की हम एक सी बात करें, युद्ध के समय और पूजा पाठ के समय, स्वाध्याय के समय हमारी दोनों की स्थिति एक सी, हमारे गले तो यही नहीं उतरती है। तो शुद्धोपयोग मुसामायिक उस आत्मानुभूति के समय भी वही की वही बात अब नहीं उतरती है, तुम नहीं समझ सकते हो अपेक्षा को, तो दुनिया में तो कोई जगत का भगवान केवली के समोषण में भी चले जाते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के कोई आचार्य ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम और केवली बराबर हैं, जो अंतर है उन्हें ख्याल में है, और ना कोई ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा कहना चाहते हैं, ख्याल में है ना? वो तो एक जो अपेक्षा से जनवाणी में कथन करने की पद्धति है उससे आपको समझा रहे हैं। अभी नए चक्र की क्लास में संजीव जी समझा रहे थे सर्वथा का अर्थ, सर्वथा का अर्थ कथनचित होता है कहीं, अब क्या करो? अब देखिये एक बनारसीदास की एक पंक्ति है, क्यों यदि वो नहीं डालें तो वह मजीठ रंग में सर्वथा न हो ही लाल, वो वस्त्र सर्वथा लाल नहीं होता। अब सर्वथा का क्या अर्थ है? बिल्कुल लाल नहीं होता, नहीं आया कुछ समझ में? उन्होंने किया था स्पष्टीकरण, मेरे ख्याल से नहीं किया, इसका लिखा तो है ही आपकी किताब में। ऐसा है कि पुराने जमाने में अंग्रेज लोग होते थे वो कपड़ा रंगते थे, मीलों से जो बनता कोरी तो अपने सफेद कपड़ा सूत से बना करके बुन देता था, फिर जिसको लाल सफेद ऐसा सब रंगना पड़ता था तो वो कपड़ा रंगते थे। वो रंगरेज नाम की एक जाति अलग थी, समझे ना? वो काम एक धंधा करती थी कपड़े रंगने का। और हमने अपने गांव में अपने आंखों से देखा है कि बाजार से महिलाओं की साड़ियां सफेद साड़ी क्या धोती थी वो सफेद आती थी और फिर उन्हें घर में रंग करके पहना जाता था। तो एक एक टोला बाजार से रंग लाते थे और उन्हें रंगते थे। तो रंगने की पद्धति मुझे बहुत अच्छी तरह ख्याल में है। क्या करते थे उसमें कि फिटकरी ऐसी कुछ चीजें डालते पानी में, नमक ऐसी चीजें डालते, फिटकरी डालते और फिर उस रंग डालते और फिर उसमें धीरे धीरे उनको डुबोया जाता। तो मैं कहता जी फटकरी और नमक इन डालने से क्या लेना देना है? तो वो यही कहते थे कि इसमें कहीं तो ज्यादा गहरा रंग चढ़ जाएगा और कहीं हल्का रंग रहेगा, तो वो चितकबरी हो जाएगी, समझे ना? वो एक सी नहीं होगी। और यदि वो डालने से उस कपड़े में वो उसे डुबो تو پوری ایک سی رنگ جاتی تھی. تو انگریز بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو وہ بنارسی داس نے دیکھا ہوگا, جب ہم نے دیکھا تو بنارسی داس نے کیوں نہیں دیکھا ہوا, تمہیں تو زندگی میں اب دیکھنے کو ملنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے بتانا یہ ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یدی اس میں وہ نہیں ملایا جائے پھٹکری آدی تو وہ وستر سروتھا لال نہیں ہوگا, مانے کہیں لال ہو جائے گا اور کہیں لال نہیں ہوگا. زیادہ تر دھوتیاں لال رنگ میں ہی رنگی جاتی تھیں, ہم نے اپنے گھر میں بھی رنگتے ہوئے دیکھا ہے انہیں, خیال میں ہے نا, کہ سروتھا نہ ہو ہی لال, یعنی وہ کسنچت لال ہوں گی سروتھا نہیں ہوں گی. تو سروتھا لال نہیں ہوں گی مانے کسنچت لال ہوں گی, ایسا ارتھ ہوگا. اور ہمیں سروتھا لال کرنا ہے اس لیے وہ ڈالتے ہیں. تو وہاں سروتھا شبد کا ارتھ بالکل کسنچت کے ارتھ میں پریوگ ہوا ہے. اب نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے, بنارسی داس کی غلطی ہے بھیا, پرانے لوگوں کی غلطی نکال نکال کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. جو انہوں نے جس اسٹائل میں ورنن کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, کیونکہ وہ تو چلے گئے. اب ان کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. کیوں؟ اب کوئی مہا بھاگ سے آپ کو ان کا جواب بھی نکال نکال کے بتاتا ہے اپنی بدھی سے, اپنے وویک سے, اپنے ادھیان سے, تو اس کا لابھ ہمیں لینا چاہیے, کیونکہ اس کی ذمہ واری تو ان کی ہے جواب دینے کی. ابھی تو چلے گئے, اب ہمارے تمہارے میں سے کسی کی ذمہ واری تو ہے نہیں. کیوں؟ اور محسوس کرے تو ہے. راجنیتی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دیش کس کا, کہ جو محسوس کرے اس کا. ذمہ واری کس کی, کہ جو محسوس کرے اس کی. نہیں کرے محسوس تو نہیں کرے, ہمیں کیا لینے دینا ہے. سڑک پہ پتھر پڑا ہوگا, اب ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ ابھی آج جتنی گاڑیاں آتی ہیں انہیں دھکا لگتا ہے, یہ کرتا ہے, اس پتھر کو اٹھا کے بغل میں ڈال دیتا ہے. اب کس کی ذمہ واری تھی؟ آپ پر کوئی دعویٰ تو کرنے والا ہے نہیں, آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کیوں؟ ہو سکتا اسے دھنیواد دینے والا بھی کوئی نہیں ملے, نہ اسے دھنیواد کی اپیکشا ہے, نہ کوئی اپیکشا ہے. اسے وکلپ آیا کہ سب کو اس میں لگتا ہے, اس نے پتھر اٹھا کر کے یہاں ڈال دیا. راستے میں کانٹے پڑے تھے, اس نے اٹھا کر کے ڈالی کو بغل میں ڈال دی. کس کی ذمہ واری ہوئی؟ بولیے, جو محسوس کرے. یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس پرشن کا جواب مجھے دینا میری ذمہ واری ہے, تو آپ بہت بڑھیا آدمی ہیں, کہیے اور نکال کر کے جواب دیجئے. نہیں کرتے ہیں تو آپ سے کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے. سمجھیں, یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کرتے ہیں تو کوئی آپ کا ابھینندن کرے گا, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں کریں گے تو دن میں لگا, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں کہ دشی میں جو سمجھ میں آئے گا کرے گا, نہیں سمجھ میں آئے گا نہیں کرے گا. تمہارے اندر میں بھاو ہے اپنے کلیان کے لیے اور جگت کے کلیان کے لیے تو کرو. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ سمیک دشٹی میں سمیک دشٹی ہوں. ان نے تو کومن کہی تھی, سمجھ سے دھیان سے سننا, کیا کہی تھی؟ کہ سمیک دشٹی کو ان 41 پرکتیوں کا بند نہیں ہوتا. اب کہا تھا اس بھاشا میں کہ بھوک کے کال میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ بات جو میں نے آپ کو سدھ کی وہ نیائے سے, یکتی سے اور کرنا نیوگ سے بھی سدھ ہو گئی نا, سمجھنا. اگلے کی سمے ساری کی بات تو نہیں رہی نا. ہم دوسروں کو سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے؟ اسے ایک طرف رکھو, ابھی پہلے ہمارے گلے تو اتر جائے. کیوں؟ اب انہیں یہ سمجھانا ہے, اس لیے انہوں نے کہہ دی سمے دشٹی کے بھوگ نظرا ہیتو, اس بھاشا میں کہہ دی کہ بھوگ کے کال میں بھی نظرا ہو رہی, کال میں آئی نا. اب ہم لڑو ان سے کہ بھوگ تو نظر آگے ہو نہیں سکتا. ارے تمہیں سمجھانا تو سمجھا دو کہ بھوگ نظر آگے نہیں ہے کارن, اس اپیکشا کئی ہے, تمہیں کون روک رہا ہے؟ جاتی بندھو نہ میرے ساتھ, اور میرے کبھی بھی بند, جاتی مانے کبھی بھی میرے کو بند نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہی تھی کامن, اس نے میرے پہ لے لی اور میں سمجھ دشتی. سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ خود نہیں, خود کو. جب بھی سمجھ دشتی کو بھی خود ہی سرٹیفکیٹ دے گا. جو متھیا دشٹی نے اپنے کو سمیہ دشٹی مان لیا, اسے بھی خود نے سمجھ دیا. اور اصلی سمیہ دشٹی ہوگا تو بھی وہ اپنے کو ہی وہی مانے گا. میں نے لکھا ہے اس میں دھرم کے درخت میں, کتاب میں آپ نے پڑھا وہ دھیان سے, تو बोले पढ़नी पड़ेगी, हर साल परीक्षा में आपको जाना पड़ता है। तो कि माधव धर्म में लिखा है, क्या लिखा कि चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती माने तो अभिमानी है, तीर्थंकर अपने को तीर्थंकर माने तो अभिमानी है, जैनी अपने को जैनी माने तो अभिमानी है, क्यों केवली अपने को केवली माने के नहीं माने, मुझे सबसे बड़ी बदौली बता दो, सिद्ध भगवान अपने सिद्ध भगवान माने क्या नहीं माने। अरे भाई जो जैसा है वैसा जानना तो सम्यक ज्ञान है और वैसा मानना सम्यक दर्शन है और तद्रूप प्रणमन करना सम्यक चारित्र है, तो ये मानने में कहां दोष है। यानी ये दूसरों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपना अपने लिए सर्टिफिकेट पर्याप्त है और उसकी सारी जिम्मेवारी भी अपनी है और फल भी अपन को उसी के अनुसार मिलेगा। अब कोई मिथ्या दृष्टि अपने को मान ले और 10-5 मिथ्या दृष्टि मिलकर उसे अभिनंदित कर दें, उसे सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ साहब ये सम्य दृष्टि है, और फिर वो ये शास्त्र फिर शास्त्र का ये काम तो किया खुद और फिर जातु बंधो न मेरे साथ, इसलिए मेरे को बंध हो ही नहीं सकता क्योंकि शास्त्र में लिखी है। वो बंध जो है ना कर्म का, वो शास्त्र देख देख के आएगा। एक कुत्ता वकील के पीछे पड़ा तो वो वकील भाग रहा था और कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा था, तो कहते वकील साहब क्यों भाग रहे, क्यों घबराते हो, डरते हो आप कि कुत्ता काट खाएगा ना, आप नहीं जानते कि कुत्ता काट खाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हें तो सिर्फ इंजेक्शन लगेंगे तो उधर, और कुत्ते को पागल समझ के म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ के ले जाएंगे, गोली से उड़ा देंगे, फांसी की सजा होगी तुम्हें काटने, तुम क्यों घबरा रहे। तब वो वकील साहब बोले इसलिए घबरा रहा हूं कि एक कुत्ता जानता नहीं है, एक कुत्ते को पता नहीं है, ये बात कुत्ते को पता नहीं है इसलिए घबरा रहा हूं। समझ गए ना, कुत्ते को कहां पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। समझ गए ना, ये जगत तो ऐसा है, ये जगत को क्या पता है क्या है, ये कुत्ते तो दौड़ने को काटने को दौड़ेंगे ही, और हमको अपने हिसाब से भाग करके भी बचना पड़ेगा, तो उसमें हमारा सम्यक दृष्टि खंडित नहीं हो जाएगा, हमारा जो कानून का ज्ञान खंडित नहीं हो जाएगा कि इसकी क्या सजा इसको मिलने वाली है, कि सामने वाला गोली है तारी क्यों घबराते हो, वो तो जानता है, वो कहता है चलूंगा फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा, क्यों वो जान रहा है। अब वो कहता है वो चढ़ेगा तो चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन मैं तो चढ़ ही जाऊंगा, है ना। तो जातु बंधो न मेरे साथ, अब इतु दानो पुलक बदना रागणो प्याचरंतु, इतु दानो पुलक बदना, इस शब्द का अनुवाद मैंने खुद सब जगह देखा लेकिन जो मेरे दिमाग में जमा हुआ है उससे बढ़िया अनुवाद मुझे कहीं नहीं मिला। गद्य में उठाया है ऊपर को मुख जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने, ये बिल्कुल संस्कृत का इस शब्द बिल्कुल ये अनुवाद है इसका सही अर्थ। उत्तानो बदन पुलक बदना, पुलक पुलक ऐसे कोई अभिमान में नहीं, लेकिन अभिमान में होता है ना उसको गाल फुलाना बोलते, दादा गाल भन फुलाओ, अरे बोलते क्या नहीं बोलते हैं। और मैंने शायद इसमें वो संस्कृत का ही शब्द डाला है, यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा, पुलकित बदन और मस्तक उठाया ऊपर को मुंह करके, मैंने जमीन पे देखता ही नहीं है कि मस्तक उठा का अर्थ क्या है, मैं चौड़ा और दुनिया सकड़ी डेढ़ है, हम क्या नीचे की तरफ देखता ही नहीं है, है ना। लगभग ना रागेणो प्यातरंतु, और राग का आचरण करता है बिल्कुल निर्गल होकर के, मैं जिन जिन चीजों को सम्यक दृष्टि में होती हैं और होने पर भी सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता, उन्हीं क्रियाओं में बिल्कुल एकत्वमत बुद्धि पूर्वक रमण करता है इतने वो। अब ऐसे जीन, अब ये देखो ये बहुत खतरनाक बात है, इसमें तो सिर्फ इतनी लिखी है कि वे राग राग की क्रियाएं, तो राग और देश दोनों की ले लेना, रागणो प्याचरंतु, माने राग देश की क्रियाओं में, क्योंकि मुझे तो इनसे बंद होता नहीं तो प्रवृत्ति करता है। अब उन्हीं मिथ्या दृष्टियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कुत्ते को पता नहीं है और वो काटे ही खाएगा, कि इन कर्मों को थोड़ी पता है कि समय सार में ऐसा लिखा है कि बंधना नहीं तो मैं बंधूंगा नहीं, और हमने ऐसी प्रवृत्ति करी और बंध गए, तो इसलिए उन लोगों ने छोड़ दिया है उनको, इसलिए छोड़ दिया है, समझे ना। आलम बनताम समिति परताम, अब समिति पर चल रहे, अच्छा रहा जमीन देख के चल रहे, अब समिति परताम में ये सब निकाल लो कि उन्होंने मुनि अवस्था प्राप्त कर ली, मैंने द्रव्यलिंगी हो गए, इतना क्रियाकांडी हो गए, वहां तक पकड़ लिया समिति परताम, एक शब्द में से आ गई ना वो बात, ते अतो यतो, क्योंकि वे अद्यापि पापा, वे आज भी पाप स्वरूप हैं, पापी नहीं, पापी में और पापा में क्या अंतर है बताया था ना उसने, बोलो प्रेम बोलो बोलो, हाँ पापा और पापी में क्या फर्क है, पापा माने पाप का पिंड और पापी माने, हाँ बोलो, पाप और पिंड दो अलग अलग हो गए ना, मैंने पाप अलग है और आत्मा अलग है और वो पाप को आत्मा करता है, ये तो पापी में दिखाई देता है, क्योंकि पाप के संयोग से वो पापी बना, और पापा माने साक्षात पाप है, वो पाप की मूर्ति है, पाप का ही बना हुआ है, ऐसा अभी बता रहे, ते अद्यापि पापा, वे आज भी पाप के पिंड हैं, क्योंकि आत्मा से रहते हैं, सम्यक् से लिखते हैं, देखो मैं स्वयं सम्यग् दृष्टि हूं, अब इसमें मूल संस्कृत में महावीर तो आया नहीं, और इसमें हिंदी में महावीर डाल दिया, तो कौन से शब्द का अक्षर का महावीर का अर्थ किया है, सोचो जल्दी बताओ बताओ, अरे भाई समिति लिखा है ना, तो समिति वाले के महावीर तो पहले होते हैं, है ना, पांच महावीर पांच समिति और तीन गुप्ती, तो महावीर तो होते ही हैं, इसलिए उन्होंने समिति परताम में समिति भी ले ली और महावीर भी ले लिए, और चाहते तो गुप्ती भी ले, कुछ भी ले लेते, इसमें क्या है, समझिए ना। लेकिन ऐसे जीवन का वो दिग्मूढ़ है, दिग्मूढ़ माने जिनका दिशा भ्रम है, सम्य दृष्टि में ही मूढ़ता है, दिग् माने दृष्टि, दृष्टि मूढ़ है, उनका जीवन अध्यात्ममय नहीं है, माने वे सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी मैं जो पढ़ना नहीं चाहता वो नहीं पढ़ के छोड़ता हूं, आपको ने पढ़ लिया होगा इसलिए, फिर नंबर निकाला 174, यहां प्रश्न हो सकता है तीसरी पंक्ति कि भोगों में अनर्गल प्रवृत्ति करने वालों को आप भले ही पापी कहें, पर महाव्रतों के पालन करने वालों को, समितियों का आचरण करने वालों को पापी क्यों कहते हो, मैंने भेद उन्हें पुण्यात्मा का पुण्यो पाप, ऐसे दो भेद करो ना, क्या मैंने पुण्यात्मा में पापात्मा, धर्मात्मा नहीं है, ये तो ठीक है, ये न्याय की न्याय का जो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पापी है वो पापमय है वो पापी, पुण्यमय है वे पुण्य, और धर्म में है, वो धर्मात्मा, ये नियम है। लेकिन तुम दोनों को ही पापी कह रहे एक साथ, तो ये जैसा लगता है कि कुछ अति हो गई। बहुत से लोगों को ऐसा है। कुंदकुन शतक की जो गाथाएं हैं उनमें कुछ मुनियों के स्वरूप का वर्णन आता है, अष्टपहाड़ों की गाथाओं के आधार पर। तो जब वो कुंदकुन वर्ष चल रहा था तो मुझे वो उदयपुर बुलाया, तो उन्होंने भी 101 छंद हिंदी के और उन पर एक एक दोहा लिखाकर दरवाजे बनाए 101, और 101 दरवाजों पर वे छंद लिख दिए और सबको कंठपाठ में, सारे गांव वालों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को कुंदकुन शतक याद करा दिया। और अब वे जो उसमें निकले, वे लग रहे बैनर और यहां बोलते जा रहे कुंदकुन शतक हमारे स्वागत में। तो उसमें वो बोलते थे कोई क्या था, जो नानियों में उठते हों ऐसे हों, वे ऐसे हैं, जो छंदे हैं तो होंगे ध्यान। आजकल तो वो बंद हो गया ना, लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं है उस पर। तो वहां पर अभी नीरज जी सपना वाले हैं, उनकी बहन आरिका थी, वे भी वहां थी। तो उन सबसे लोगों ने उनसे कही कि आप इतना विरोध क्यों करेंगे, देखो ये तो सब कुंदकुंद की गाथाएं हैं, गाथा नंबर लिखा है नीचे कि कुंदकुंद की हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब बात सच्ची है। लेकिन ये 10-10 वर्ष या 11-8 वर्ष के लड़के वो जब गली गली में ऐसे चिल्लाते हैं कि नारियों से ऐसा करें ऐसा करें तो ये नहीं हो, वे श्रवण नहीं त्रियंज हैं, वे श्रवण नहीं त्रियंज हैं, वो गाथाएं आती हैं ना, तो हमारी छाती फटती है। मैंने सवाल उस बात की सत्यता तो नहीं है। और कुंदकुंद कहें, कुंदकुंद जैसे आचार्य कहें, हमारे गुरुदेव कहें, तो भी हमें आचार्य नहीं है। लेकिन ये बच्चे बच्चे को रटा दी और गले गले में बैनर लगा दी, वही बच्चे बच्चे बोलने लग गए। इसी टाइप का ये प्रशिष्ट है कि भाई तुम उनको पुण्यमय वे पापमय धर्ममय, सीधी सच्ची बात है, इसमें कहां गलती है कि नहीं, नहीं इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो पापमय क्यों कह रहे कि हम इसलिए नहीं कह रहे कि वे पूजा कर रहे, समिति पाल रहे, महाविद पाल रहे, ध्यान से सुनना, ये हम कोई किसी के गुस्से में नहीं कह रहे, वस्तु स्थिति के अनुसार कह रहे हैं। क्योंकि ये जो अपेक्षा चल रही है हमारी, कौन से चौथे गुणस्थान की दर्शन मोह की अपेक्षा और उसके बाद में चरित्र मोह की अपेक्षा जो हम गोमर सार की बताई थी ना, ये जो अपेक्षा चल रही है, इस अपेक्षा से मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। पाप का बाप नहीं दादा है, वो मिथ्यात्व नामक पाप दोनों में एक सा है। तो वे पापी जो हम कह रहे हैं वो मिथ्यात्व के अर्थ में कह रहे हैं, ये इन हिंसा झूठ चोरी कुशील के अर्थ में नहीं कह रहे। समझ में उत्तर समझ में आ गया कि नहीं? देखो लिखा, उत्तर यह है कि परमे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और यह सबसे बड़ा पाप दोनों में सदा एक सा ही विद्यमान रहता है, महावृति मुनियों में और उनमें, समझे? इसलिए वे दोनों समान रूप से पापी हैं, यही बात इस कलश में कही गई है। आप देखिए कितना क्लियर उत्तर है। तो हम अभी दूसरे पाप की बात ही नहीं कर रहे। इसमें एक गाथा आती है योगसार में, पुण्य तत्व को पुण्य तो कहता है सब लोग, और पुण्य तत्व भी पाप है कहे बिल्ले ज्ञानी कोई। पुण्य को पुण्य तो सारी दुनिया कहती है, पाप तत्व को पाप तो कहती सारी दुनिया ताप है, और पुण्य तत्व को भी जो पाप कहती है वो देखो, ये जो कहते नहीं वो अमृतचंद का नहीं, जयसेनाचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में पटुकुल गाथा ताक उसको पापाधिकार लिखा है, और लिखा पापाधिकार अब समाप्त होता है यहां, और उसमें पहले जो वर्णन है वो सब पुण्य का है। देखो आप इसमें तो अपने सब दिया है ना, इस कलश में जो बात कही गई है वह जगत के गले आसानी से नहीं उतरती, क्योंकि जगत को यह बहुत अटपटी लगती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इस कथन का जो असली भाव है वह उनके ख्याल में नहीं आता। यही कारण है कि पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में उसका बहुत विस्तार से अर्थ करते हैं। ये यहां तक देखो, करीब दो पेज से ज्यादा उनका जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है, इसे पढ़ना। गले नहीं उतरती ना जगत के, है ना। अब आगे चलो, 176। यद्यपि जयचंद जी भावार्थ में सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तथापि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर स्वामी जी के विचार जाने बिना भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। बात वही की वही रिपीट होने वाली है, लेकिन स्वामी जी भी क्या कहते हैं ये बताना कि जयचंद जी छाबड़ा में और स्वामी जी के में और अमृतचंद के में और जयसेन के में क्या फर्क है। देखो, अब स्वामी जी को दोष देने, सब स्वामी जी के नाम मरने से क्या मतलब है ना। ये भी इसमें लिखा है, देखो कलश में पापा शब्द पड़ा है, मिल गया ना, पेज नंबर 217 के ऊपर ही। मिथ्यात्व का पाप ही सबसे बड़ा पाप है और उसकी अपेक्षा ही यहां मिथ्या दृष्टि को पापी कहा है, है ना। यद्यपि ये बाह्य द्रव्य हिंसा झूठ आदि पापाचरण नहीं करते, तथापि मिथ्यात्व के बस रागादि में उपाय रहे बुद्धि रूप भाव हिंसा तो होती ही रहती है, और मिथ्यात्व का परिणाम स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, अतः वह पापी ही है। ये गुरुदेव का ये कथन है। अब इसको लेकर के आप कहोगे तो गुरुदेव उसे पापी करे, मुनियों को पापी करे, मुनियों को पापी करे, और बस स्थापित देश में और सारे मुनियों को भड़का दो, मुनियों को भड़का दो, हमें पापी करे, हमें पापी करे। लेकिन ये समझाने है, मैंने एक दिन बताया था ना, कुछ गुरुदेव श्री इंदौर गए थे तो वहां कांच के मंदिर में एक दोहा लिखा, चक्रवर्ती की संपदा अभी भी लिखा है, इंद्र सार के भोग काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। तो गुरुदेव को बीट शब्द का समझ में नहीं आया, तो वहां जो विद्वान साथ में थे उन्होंने पूछा कि बीट बीट क्या होता है, बीट क्या होता है। तो अभी तो गुजराती थे ना, गुजराती में नहीं बोली, तो कहा बीट माने मल, मल 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 को हमने कहीं नहीं सुना बीट, कि कौए की भी काक, काक माने कौआ, तो कौए के मल को बीट बोलते हैं। आप जानते हैं ये मलों के भी बहुत नाम हैं, दसवीं नाम तो आपको भी पता है ना। देखो, गाय के मल को गोबर कहते हैं, घोड़े घोड़ी के मल को लेहड़ा कहते हैं, है ना, बकरी के मल को लेड़ी कहते हैं, है ना, पक्षियों के मल को बीट कहते हैं, है ना। अब आप लगाते जाना दिमाग, आप दौड़ना तो कितने, उनके सब नाम अलग अलग है, शास्त्रों में है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो ये उनको बताया गया, तो उन्हें समझ में आता था मल मल है, मल है। अब अपने प्रचन में जाके कहा, मैंने कांच के मंदिर में ऐसा छंद लिखा देखा, उसमें लिखा था काक भी, काक का, काक का मल। तो उन्होंने कहा देखो देखो देखो, चक्रवर्ती की संपत्ति को जे मल मल मूत्र कह रहे, और कितना कह रहे ऐसा कह रहे हो, चक्रवर्ती की संपत्ति को, चक्रवर्ती ज्ञानी सम्मानी फलाने वो भरत बल है, और फिर कौन कौन से चक्रवर्तियों के नाम लेने लगे, और शांतिनाथ भी चक्रवर्ती थे और उनको भी ये कह दिया ये कह दिया वो सब। भाई मैं तो उस चरण का अर्थ कर रहा हूं। एक और झगड़ा बड़ा था, तुमने मेरा एक देखी हो, मैं चेतन चमत्कार किताब, उसमें एक इंटरव्यू लिखा है, वो इंटरव्यू में वो गुरुदेव पर वो है ना पाप लागते नहीं, एक सुल्लक धर्मदास जी थे, ये सब आप समझ, सुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना, वो बहुत अध्यात्मी थे और उस वक्त कोई उनको अध्यात्म कहीं मिलता नहीं था, सारी दुनिया में अध्यात्म खोजते फिरते थे। तो वो भट्टारक जी के पास गए, कारंजा में बेसमय सार के पाथी थे, हैं, और उनसे उन्होंने पूछा ऐसा 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 करके, और वो उन्हें आता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आत्मा, उन्होंने कहा देखने वाले को नहीं देखता है, अरे धुतके दिया भट्टारक जी ने, मेरे पास आ गया, क्या आत्मा समझ में नहीं आता, आत्मा समझ, अरे देखने वाले को नहीं देखता है,
ये क्या कह रहे, धुतकार दिया।
क्या कह रहे, रात भर सोचते रहे तब सुबह 5 बजे उठते समझ में आया कि देखने वाले को नहीं, देखने वाला जो आत्मा है वही तो तू है। और उन्होंने जैसे निहाल जी सवानी हो गए थे, समय से हो गए थे, उन्हें वहां हो गया। अब उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान दीपिका, चंद्रिका नहीं दीपिका। तो उसमें एक बात लिखी कि जिसके माथे, शब्द है बोल रहा हूं, जिसके माथे पति हो वो यदि विचार का भी सेवन करे तो दोष लागते नहीं। ऐसा उदाहरण दिया, वैसे ही जिसके माथे गुरु हो, ऐसा कुछ उदाहरण सिद्धांत बताया है, उसको दोष लागते नहीं, ऐसा समझे ना। तो गुरुदेव ने वो उदाहरण पढ़ा, उसका अर्थ किया कि दोष लागते नहीं माने वो कोई जिसका पति है वो औरत विचार करे वो धर्म है कि अच्छी बात है, ऐसा तो उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ तो ये है कि वो फिर गर्भवती रह जाए तो उसको कोई समाज वाले टोका टोकी नहीं कर सकते क्योंकि उसका पति जिंदा है। लेकिन कोई विधवा कैसा करे तो उसको बात, उसको दोष लागते नहीं, दोष लागते नहीं का मतलब समझे ना, समाज उसको दोष लगा के बहिष्कृत नहीं कर सकती, ये अर्थ है उसका। पर वो उदाहरण और उदाहरण सिद्धांत का अर्थ घटाया, बुद्धि लगी उसमें लिखा, उसमें ये भी लिखा कि शास्त्रों में लगी हुई बुद्धि व्यभिचारिणी है। अब वो भी उनने बोला तो उनके नाम तो बहुत हो हल्ला हुआ। तो मैंने गुरुदेव से एक इंटरव्यू लेकर उसका पूरा अर्थ समाज को समझाया, उसमें लिखा तो समाज में तब शांति हुई। भाई तो मैं तो पंडित धर्मदास सुल्लक की किताब पार के बता रहा हूं कि उनने ऐसा उदाहरण दिया है, उसमें उनका कुछ नहीं था लेकिन उन्हीं के नाम में मर गया। ये जगत का स्वरूप ऐसा है, और हमें बराबर प्रमाण दे रहे हैं ना सब जगह कि एक बनारसीदास ने ऐसा लिखा, राजमल जी ने ऐसा, जयसेन ने ऐसा लिखा, अमित चंद ने ऐसा लिखा, कांजी स्वामी ने ऐसा लिखा। अब बस वो कहें हमारे वहां से पढ़ते हैं कि ये ऐसा कह रहे, ऐसा कह रहे, ऐसा कह रहे, ऐसा कह रहे। हम तो सबके इतने प्रमाण दे रहे भाई साहब, है ना, वो भी प्रमाण दे के कह रहे हैं। देखो कहां था स्वामी जी का हो गया, ये भी पढ़ लेना पूरा, चलो आगे। बनारसी दास के कुछ छंद हैं बहुत मार्मिक, 179 पर। बनारसी दास जी के क्या था, कई छंदों को कलशों को उन्हें छोड़ ही दिया, उनके छंद ही नहीं लिखे, और जहां मन लग गया तो कई छंद लिख दिए। और इस कलश पे उन्होंने ये 4 छंद लिख दिए, 4 तो मैंने दिए हैं और भी ज्यादा होंगे, पढ़ो जरा इनको, बहुत अच्छे हैं। यहां आपके स्पीकर पर पढ़ो, टीवी पे भी आ जाएंगे, पढ़ो कौन है? अच्छा गले वाला है, ढंग से पढ़ना, और तुम अर्थ समझने की कोशिश करना, नहीं आया समझने तो पीछे मैंने अर्थ लिखा है पूरा पेज पे, वो पढ़ना। हाँ चलो, हाँ बड़ा पढ़ो जल्दी शांति से, आप अपनी किताब में देखो।
जो नर सम्यक वंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी, आत्म अंग अवंद विचारत, दारत संग कहे हम त्यागी, वेश धरे मुनि राज अटंत, अंतर मोह महानल दागी, सुन ही ये कर तूत करे पर, सोचत जेब न हो ये विरागी, ग्रंथ रचे चरचे शुभ पंथ, लखे जग में विवहार सुपंथ, साधि संतोष आराध निरंजन, देह सुशेख न लिए अदत्ता, नंग धरंग फरे तज संग, चके सर्वंग मुदारस मंत, ए कर तोत करे सट पे, समझो नाना तमे आत्म सत्ता, ध्यान धरे कर इंद्रिय निग्रह, विग्रह सो नगने निज नंत, त्यागी विभूति विभूति मणे तन, योग ग्रहे वव भोग विरत्ता मौन हरे लहि मंद कसाय सहे बद वंदन होए न तत्ता ए कर तोत करे सट पे समझे नाना तमे आत्म सत्ता जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे जो बिन क्रिया मोख पद चाहे जो बिन मोख कहे मैं सुखिया सो अजान मूढ़नी में मुखिया
बनारसी लाल जी ने लिखा है। देखिए कि तीन छंद जो है ना सवैया तेईसा ये सवैया दो प्रकार के होते हैं एक सवैया इकतीसा और एक तेईसा। इकतीसा सवैया का दूसरा नाम मनहरण कवित्व भी है आप समझे ना। और वो इकतीसा भी होता है बत्तीसा भी होता है तैतीसा भी होता है ये तीन तरह के होते हैं उसमें छंद अलंकार नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको समझे ना। ये तेईसा सवैया है। इस तेईसा सवैया में हर तीन छंद हैं तीन छंद की हर एक छंद की चौथी पंक्ति एक सी है। सुन ये करतूत करें पर सोसत जीव न हो विरागी। और फिर देखो ये करतूत करें सट पे समझे न अनात्म आत्म सत्ता ये करतूत करें सट पे समझे न अनात्म आत्म सत्ता। ये दो पंक्तियां तो बिल्कुल एक सी हैं है ना। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने वे सब क्रियाएं गिनाई वो तो एक छंद में पूरी नहीं होती थी इसलिए उन्होंने तीन छंद बनाए। कौन कौन सी क्रियाएं करें अब ये बात तो यहीं से लगाना कि जे नर सम्यक बंत कहावत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं अपने को और सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी हो। लेकिन सम्यक ज्ञान तो उनकी है नहीं सम्यक ज्ञान नहीं मैंने सम्यक दर्शन नहीं है सम्यक सम्यक ज्ञान एक ही बाकी सम्यक ज्ञान की कला तो जगी नहीं है और अपने को सम्यक दृष्टि मान के बैठ गए हैं। तो आत्म अंग अबंध विचारत तो आत्मा को तो बंध होता नहीं है क्योंकि बसा है ना। धारत संग कहें हम त्यागी और संग मैंने परिग्रह का धारण करते हैं और कहते हैं हम त्यागी हैं कि हमारा है ही नहीं हमारा है ही नहीं हम है ही नहीं इसे क्या है इसमें इसे हमारा क्या लेना देना। धारत संग कहें हम त्यागी भेष धरे। अब देखो अभी जो मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन अपने आप समझ लेना कि दुनिया भर का जैसे इनकम टैक्स में होशियार हो गए ना आज के व्यापारी कि सारा परिग्रह अपने रखते हैं हजारों दस दस बंगले जे वो सब अपना मानते हैं उसे खुद जोड़ा है और इनको टैक्स बताने के लिए कुछ पत्नी के नाम किसी के नाम उसके नाम बच्चों के नाम कुछ बेनाम ऐसे करते हैं क्या है ना। और इनकम टैक्स के लिए मेरा कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं है। देखो अभी देश में अभी 10-5 साल की छोड़ दो पुराने महिलाएं एक नया पैसा नहीं कमाती थी और संपत्ति 90% देश की महिलाओं के पास है पुरुषों के पास नहीं है। इनकम टैक्स फाइल देख लो क्या महिलाएं खुश अपने माँ को क्या करना कुछ नहीं सब अपना नाम हो गया। अब ये पता नहीं कि जब ये पकड़ी जाएगी तो जेल में हमको ही जाना पड़ेगा ये गलत तरीके से इकट्ठी की है हमारे नाम चढ़ा दी है तो हमें जेल में हमें जाना पड़ेगा कि नहीं। अब ऐसे ही वहां भी अपना लिया उन लोगों ने कि सारा परिग्रह जोड़ा है दस दस बसें चल रही हैं जी तकना ये कह रहा है हमारा कुछ नहीं हम तो एक तन में बस भी नहीं ये तो इन लोगों का है ये सब ग्रस्त लोग हैं ये सब करते हैं उनकी इच्छा के बिना एक ने मतलब एक नया पैसा सेठ जी की इच्छा के बिना नहीं निकलता है और सेठानी चाहे तो 5 रूपये दान भी नहीं दे सकती है और सारा नाम सेठानी के ऐसा सारा नाम ग्रस्तों के और उनकी मर्जी के बिना पता नहीं चलता। देखो लिखा ना भारत संग कहें हम त्यागी और तत्काल लिखा भेष धरे मुनिराज पटन तक मुनिराज का भेष धारण कर लेते हैं और अंतर मोह महामल दागी और अंतर में मोह की नथात्व की आग लग गई महानल भयंकर आगी दागी माने लग रही है। शून्य हिये करतूत करें सोसठ जीव न होए वैरागी, ऐसे मूर्ख जीव वैरागी नहीं है। अब इसमें लिखा सर, अब हम अर्थ करें कि नहीं करें इसका, क्या ग्रंथ? अब देखिए ये सेठों को निपटा दिया, अब पंडितों पे आए। सेठ गए अब पंडित, एक छंद में नहीं आए। ग्रंथ रचें माने किताबें लिखते हैं, चरचें शुभ पंथ, और शुभ पंथ की शुभ भाव की चर्चा करते हैं धर्म के रूप में, और लखे जग में व्यवहार सुपत्ता, व्यवहार के मार्ग को जगत में बताते हैं। धारी संतोष आराध्य निरंजन, संतोष को अपने संतोष को धारण करते हैं, देखो हम आए ना, और आराध्य निरंजन, निरंजन आत्मा की आराधना करते हैं, और देह सुशीख न लहना, और सीख देते हैं प्रवचन करते हैं। देह सुशीख माने अच्छे अच्छे कामों की प्रवचन करते हैं, सीख देते हैं, और लहना आदत्ता बिना दिए एक लेते नहीं है, कौड़ी नहीं लेते बिना दिए, माने अनुवृत हो गया ना, अतोजा अनुवृत। नंगे धरेंगे फिरे आप समझ लो, लेकिन ये पंडितों की माने, ग्रंथ रचे माने, ये उन पंडितों की बात है जो नंगे धरेंगे फिरे। अब नंग धर्म भंग अर्थ करें तो फिर कह दीजिए क्या करे, क्या अर्थ है समझ लो आप। नंगे धरेंगे फिरे तज संग, परिग्रह छोड़ दिया है, थके सर्वंग, लेकिन सर्वांग थके हुए हैं, सुधारस मत्ता, मुधारस मत्ता, मुच्छात में मदोन्मत्त है। एक करतूत करें सठ, सबका नाम सठ दिया, समझे ना आत्म अनात्म सत्ता, आत्मा और अनात्मा की सत्ता का विचार नहीं करते। ध्यान धरें, अब ये तीसरे नंबर के लोग आ गए, ख्याल में है ना, पहले वे शेष नंबर के, फिर पंडित मान हैं तो वे साधु ही, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान है जिनमें इनमें। ध्यान धरें करें इंद्रिय निग्रह, अब वो आ गए ना सब भाई आते हैं। विग्रह सोना गणे निजे नत्ता, और विग्रह माने परिग्रह, परिग्रह से अपना नाता है, मेरा कोई नाता नहीं है। विग्रह सोना गणे निज निज नत्ता, नत्ता माने नाता, मेरा कोई नाता नहीं है। ये जानते हैं नत्ता से नाता से नत्ता कैसे हो गया, ये तत्सम शब्द होते हैं ना, तद्भव तत्सम ऐसे आएंगे। त्याग विभूति, विभूति मणे तन, विभूति माने क्या होता है भैया, विभूति माने रुपया पैसा धन संपत्ति बंगले वगैरह, और विभूति माने वो होता है ना जो शरीर पर साधु लोग लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भस्म राख। देखो त्याग विभूति, विभूति मणे तन, ऐसे लोग शरीर पर वो राख मल लेते हैं जो साधु लोग उनकी। त्याग विभूति, विभूति मणे तन, जोग गहें भव रोग विरक्ता, संसार से विरक्त। मौन लहें लही मंद कसाय, मंद कसाई हो गए, ये तीव्र कसाई थे मंद कसाई। सहें बद बंधन होए न तत्ता, ये बद बंधन कोई मारे कोई बांधे तो बर्दाश्त करते हैं। तत्ता माने गर्म नहीं होते हैं, माने गुस्सा नहीं करते हैं, ये तत्ता माने गर्म, ताते 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 बोलते ना, हाँ तत्ता माने बोलते गर्म हो जाती कोई चीज तो ताती हो गई ना, ताती बासी नहीं ताती, समझे ना। बंधन हो न तत्ता, एक करतूत करें सट पे न समझे न आत्म अनात्म सत्ता। ये मैंने सब अर्थ लिखा है नीचे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब लोग नहीं समझ पाएंगे, अभी मेरे समझाने में भी कोई अक्षर शब्द रह गए होंगे, तो आप तीन तीन दफे से पढ़ना, कैसे पढ़ोगे मालूम, अरे आगे पीछे है ना, तो फिर पीछे देखना, फिर आगे पढ़ना, फिर पीछे देखना, फिर आगे पढ़ना, ये जो पेज को कम से कम 25 दफे ऐसा ऐसा पलटना। नीचे लिखा होता तो बहुत बढ़िया होता है, तकलीफ नहीं करनी पड़ती अब, लेकिन क्या करें, यहां से मिलान मिलान करके देखना एक एक छंद का अर्थ, कौन सा रह गया, किस शब्द का नहीं आया, कैसा नहीं हुआ, क्या हो गया, ऐसा अच्छी तरह जमाना उसको, और जम जाए जब पूरा फिर इसमें से अर्थ समझ में आ जाए, ऐसा करना। अब ये निष्कर्ष है इसका, ये बहुत प्रसिद्ध है बनारसी दास की चौपाइयां। तीन तरह के जीव हैं जगत में, कौन मूर्खों में, मूर्खों में तीन तरह के जीव हैं, लेकिन उनका सरदार कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो सब उसमें बताया है। मूर्खों हैं तीन तरह के, लेकिन उनमें प्रेसिडेंट कौन है, सुनो। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, क्या समझने की क्या जरूरत है, करने से होगा ना। आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो कुछ नहीं करता है वो भी ये कहता फिरता है कि कोई बातें करते हैं, कोई बातें करते हैं, करते तो कुछ है नहीं, बातें करने से क्या होगा, समझने सांस पढ़ने से क्या होगा, कुछ करो भाई, उपवास करो, व्रत करो, कुछ करते तो है नहीं, सब सब पढ़ता, पढ़ना तो बहुत हो गया, अब कुछ करो। ये ध्यान वाले भी ये कहते हैं, उपवास वाले भी ये कहते हैं, ये सब ये कहते हैं, पर क्या होता है इसमें, करो कुछ करो। और वो यहां आकर एक घंटा प्रवचन सुनने की वजह एक घंटा मंदिर में बैठे बैठे जो भी करते रहते हैं पूजन पाठ वगैरह उसको कुछ करना मानते हैं, और यहां तुम लोग निठल्ले बैठे हो, समझे ना। वो क्या कहते हैं, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, उनको नंबर एक दिया है, किनमें समझे ना, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, वे समझ लो जो ऐसा कहने वाले सब। अब जो कुछ लोग कहते हैं भैया क्या करने है? करने से क्या है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, वो कहते करने से हमें मुक्त चले जाएंगे, हम लोग आत्म ज्ञान से मुक्त। अरे क्रिया माने जानना माने ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना माने क्रिया, देखा ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष, वो कहते हैं ना, करते थे कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं जो बिन क्रिया माने वो ध्यान भी नहीं करते हैं और मोक्ष पद चाहे, वो ध्यान माने ये नहीं जो ये चलता है अड़ोस पड़ोस में कि यहां हुआ, वो ध्यान व्यान है कहां, ज्ञान के बिना तो ध्यान होता ही नहीं है। अब एक कुछ लोग इतने हैं, वो बहुत ही लोग हैं ऐसे सरदार सरदार लोग कैसे, वो क्या कहते हैं, अरे क्या करना भाई, हम तो यही सुखी हैं, मोक्ष मोक्ष में जाके करें क्या, वो ऊपर जाके उल्टे लटक जाएंगे, ना खाने पीने का मजा, ना घूमने फिरने की सुविधा, क्यों कोई फायदा नहीं, हमें नहीं जाना है। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, मोक्ष के बिना ही मैं अपने को सुखी मान रहे। गुजरात में तो ये हालत है कि वहां जाओ किसी गांव में पूछो यहां कितने घर जैनियों के हैं, तो छूटते ही बोलेंगे 100 घर हैं जिसमें 10 घर सुखी हैं। मैंने कहा हमने सिर्फ जैनी के घर पूछे थे, उनमें सुखियों और दुखियों के तो नहीं पूछे थे, लेकिन बिना पूछे ही बताते हैं कि 10 घर सुखी हैं, समझ गया। जयपुर में कितने होंगे, 10,000 घर, सुखी कितने हैं, क्या तो सुखी माने जिनके पास बहुत धन होता वही सुखी कहलाते हैं, वही बड़े कहलाते हैं, क्या है क्या नहीं, क्यों बोलो क्या नाम है, सुखी का मतलब क्या, तो कहते वे कौन है, देखो उनको दिया है बनारसीदास ने, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूडन में मुखिया, उन मूर्खों का श्रेष्ठ सरदार मुखिया वो है। वैसे तीनों ही मुखिया ही हैं, लेकिन कुछ जनता भी होनी चाहिए ना, ये बनारसी दास का 400 साल पुराना लिखा छंद है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया बस। अब ये पढ़ लेते हैं अपन 181 पेज पे खत्म। निष्कर्ष यह है कि सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की पूर्णता होने पर ही होती है, और अनंत सुख की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही होती है। उक्त संपूर्ण कथन के आलोक में जब हम आज की स्थिति पर निगाह डालते हैं, तो आज की स्थिति का विहंगावलोकन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। मैंने बनारसी दास के समय में ऐसी स्थिति थी जो बनारसी दास ने लिखा, तो अब आज के हिसाब से देखो ना, बनारसी दास की 400 वर्ष पुरानी बात क्यों देखते हो, तो हमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता है, अपितु सोचनी स्तर तक बिगाड़ हुआ है। होना ही था, क्योंकि वह अवसरपणी काल चल रहा है ना, यह विचार कर संतोष धारण करना होगा, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ लिखना या कहना संभव नहीं है। कछुए की भांति हाथ पैर समेट कर स्वयं में ही समा जाने में सार है।